તારીખ 10/5/1995 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 609 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 484
કારણ મિટાને કા ઉપાય ક્યા હૈ દોનો બાત અબ 10વે પેરેગ્રાફ મે કરેંગે મિથ્યા આગ્રહ સ્વચ્છંદતા प्रमाद और इंद्रिय विषय की उपेक्षा न की हो तभी सत्संग फलवान नहीं होता। सत्संग फलवान नहीं होता है इसके चार प्रकार के परिणाम बाधक कारण रूप में होते हैं। इसमें एक तो पहला है मिथ्या आग्रह। मिथ्या आग्रह माने क्या कि सत्संग में यथार्थ आत्मकल्याण का मार्ग मिले ऐसी बात हमारे सामने आती है फिर भी हम हमारी मनमानी रीत से आत्मकल्याण करना चाहते हैं और उसका हमें आग्रह रहता है कि हमको ऐसा होता है इसका क्या करें, हमारे में वो करना है उस प्रकार से हमको क्या करें। अनेक प्रकार के पूर्व ग्रहित जो भी निश्चय है वो निश्चय नहीं छूटता है तो आड़ा आता है, उसको कहते हैं मिथ्या आग्रह। मिथ्या आग्रह मैंने अपने को ऐसा नहीं लगता है कि मिथ्या आग्रह है, वास्तव में वो मिथ्या आग्रह होता है ज्ञानी के दृष्टि से। उनको तो ऐसा लगता है कि मैं तो मेरा दोष मिटाने के लिए ये साधन करूं, वो साधन करूं, आगे बढ़ने के लिए वो साधन करूं, ऐसा कहीं न कहीं अपनी पद्धति से कार्य करना मानता है और उसका आग्रह रहता है। मिसकॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं वो तो मिथ्या आग्रह है। और स्वच्छंद, स्वच्छंद में तीव्र रस से कषायित परिणमन होना और ज्ञानी के बताए हुए मार्ग पर नहीं चल करके दूसरा रास्ता पकड़ना, ये जीव का स्वच्छंद है। जब ये बात स्पष्ट और प्रसिद्ध है कि एक हो तीन काल में परमार्थ का, तो एक मार्ग कौन है वो पकड़ना है, दूसरे दूसरे मार्ग को हमें उपाय को पकड़ना नहीं चाहिए। तो अपने अभिप्राय से चलना और अपना गलत अभिप्राय को पर वजन रह जाना, गलत अभिप्राय पर वजन रहना वो मिथ्या आग्रह है और अपने अभिप्राय से चलना ज्ञानी के अभिप्राय से नहीं चलना। धर्म साधन तो हमने बहुत किए हैं लेकिन ज्ञानी के अभिप्राय से नहीं किया है, ज्ञानी की आज्ञा में रह करके नहीं किया है। प्रमाद मैंने शिथिलता, प्रमाद मैंने शिथिलता और प्रमाद मैंने आत्मकल्याण को छोड़ करके अन्य प्रकार के कार्य में लग जाना, उसी को भी प्रमाद कहते हैं। भले ही व्यस्त रहता हो कोई आदमी लेकिन आत्मकल्याण का परिणाम नहीं करके दूसरे दूसरे कार्य में लगता है वो भी जीव का प्रमाद है। कहेगा ऐसा कि हम जानते हैं कि आत्मा का कल्याण कर लेना चाहिए लेकिन लगता है समय बीतता है, आयु बीतता है दूसरे दूसरे काम में, वो जीव का प्रमाद है। और इंद्रिय विषय की उपेक्षा न की हो, उदासीनता नहीं आई हो, पांच इंद्रिय के विषय की अपेक्षा रहा करती हो पर उपेक्षा न होती हो, अपेक्षा और उपेक्षा परस्पर विरुद्ध है, उपेक्षा नहीं की तो अपेक्षा अवश्य अवश्य की और परिणाम विषय कषाई से बहुत मलिन रही हो रहे हैं, तभी सत्संग फलवान नहीं होता। परिणाम में मलिनता अधिक रहने से सत्संग फलवान नहीं होता। अथवा दूसरा, सत्संग में एक निष्ठा और अपूर्व भक्ति न की हो, सत्संग से आत्मकल्याण होगा ही ऐसी एक निष्ठा नहीं आई हो, इतना मूल्य नहीं हुआ हो और उसके प्रति बहुमान जो आना चाहिए ज्ञानी के प्रति सत्पुरुष के प्रति वो नहीं आया हो, एक अपूर्व भक्ति आ जाए तो अनेक प्रकार के दोष तो उत्पन्न ही नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात तो है कि अनेक प्रकार के दोस्तों उत्पन्न ही नहीं होंगे, वरना छोटे मोटे दोष उतने होते रहेंगे कि मार्ग पर आने में बहुत तकलीफ हो जाएगी। कभी कोई दोष छोटा दिखता है लेकिन ऐसा होता है कि गाड़ी में सब तो बराबर हो लेकिन एक पंचर हो जाए तो गाड़ी आगे नहीं चलेगी। पंचर कितना होता है? एक छोटी से पिन टायर में लग गई और सब पूरी गाड़ी में बस सब चीज बराबर है लेकिन गाड़ी चलेगी। उस प्रकार से अपूर्व भक्ति और एक निष्ठा नहीं होने से भी सत्संग निष्फल जाता है। इसलिए जो सत्संग में शरीक होते हैं, सत्संग में उपस्थित रहते हैं, उन लोगों को ये छहों प्रकार के परिणाम को टैली कर लेना चाहिए कि कहीं इस प्रकार के दोष तो हमारे में नहीं है। यानी सत्संग प्राप्त होने पर भी हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो अवश्य इसमें से कोई न कोई प्रकार का दोष चालू है। हाँ, अपूर्व भक्ति, अपूर्व भक्ति का मतलब होता है अत्यंत अत्यंत भक्ति। कभी ऐसी भक्ति नहीं आई वो ऐसी भक्ति कि हमारा निर्वाण पद का साधन है तो उसमें कोई भी कसर रहने नहीं चाहिए, ऐसा अपूर्व बहुमान, अत्यंत अत्यंत बहुमान आए तो उस बहुमान के कारण से भी कितने प्रकार के दोष तो आएंगे ही नहीं, उत्पन्न होंगे ही नहीं। वरना छोटे मोटे दोष में उतने रुक जाएंगे कि जैसे गाड़ी में पंचर हो गया, गाड़ी नहीं चले, दोष देखेगा छोटा लेकिन हमारी गाड़ी परमार्थ मार्ग में चालू होगी ऐसा बनता है। ये तो आप लोगों की चर्चा में तो बात चली कि गुरुदेव हमारे लिए तीर्थंकर से भी अधिक है, अनंत तीर्थंकर से अधिक है। ये भक्ति बेहद भक्ति होती है। कैसी भक्ति होती है? जिस भक्ति को मर्यादा हो, जिस भक्ति को हद हो वो अपूर्व भक्ति कही नहीं जाते। यथार्थ भक्ति होती है वो बेहद होती है। और देखो अनंत तीर्थंकरों से अधिक, एक दो तीर्थंकर से नहीं, 150 तीर्थंकर से नहीं, 1,00,000,2,00,000 करोड़ तीर्थंकर से नहीं, अनंत तीर्थंकर से अधिक कितनी भक्ति हुई। तो ये बेहद भक्ति हुई तो हम बुद्धिमान लोग कभी कभी ऐसी बातें में बुद्धि लगाएंगे कि कोई अतिशयोक्ति तो नहीं है क्या, गुरुदेव तीर्थंकर तो थे नहीं, सर्वज्ञ तो दशा में थे नहीं, प्रकट सर्वज्ञता तो प्रकट हुई नहीं थी, न नग्न दिगंबर निर्ग्रंथ मुनिराज भी थे, सबसे सातवें गुण स्थान में भी नहीं थे, वो बात भी खुली थी। अब जब नीचे के गुण स्थान में जघन्य मोक्ष मार्ग में थे, उनकी भक्ति अनंत तीर्थंकरों से भी अधिक कहना, तो क्या ये अतिशयोक्ति नहीं थी कि नहीं थी, ये हमारा प्रश्न है। उसको अतिशयोक्ति कहें या नहीं कहें, क्यों नहीं कहें बताइए, ऐसा तो नहीं चलेगा, क्यों नहीं कहें है? वो तो हमारा प्रश्न है कि क्या भावुकता में बोले या अतिशयोक्ति कर दिया, क्या बात हुआ है? वो दलील तो खुद ने भी दिया है। दूसरी एक बात और भी निकलती है कि लाभ कितना हुआ, लाभ अनंत हुआ तो उपकार अनंत नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे, प्रमाणिकता है कि नहीं है? आपने हमको 10 रुपया दिया तो हम 10 रुपये का माल हमको देना पड़े, हम 8 का दे तो अप्रमाणिकता है, लेकिन 10 रुपये में 10 रुपये का माल मिले उसमें अप्रमाणिकता नहीं है, वो तो बराबर है। तो लाभ अनंत हुआ तो भक्ति भी अनंत आएगी, अनंत भव भ्रमण मिट गया तो अनंत लाभ हुआ कि नहीं हुआ, अनंत सुख की प्राप्ति हो जाएगी तो अनंत लाभ हुआ कि नहीं हुआ, अनंत लाभ हुआ तो भक्ति भी अनंत आए बिना रहेगी नहीं। अनंत लाभ होने पर भी भक्ति कम आए ऐसा कभी बनेगा भी नहीं। और जिसको भक्ति में नाप जोक करना है कि भाई ये तो चतुर्थ गुण स्थान वाले हैं, इसकी भक्ति ज्यादा मत करो, ज्यादा करनी हो तो निग्रंथ मुनिराज की करो, सदगुरु की, और इससे ज्यादा करनी हो तो दिनेंद्र परमात्मा की करो, लेकिन गुणस्थान अनुसार नाप जोक करना चाहिए, वरना बैलेंस रहेगा नहीं। हाँ, बुद्धिमान लोग तो बुद्धि लगा के लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, हाँ ये वरना क्या होगा, आउट ऑफ बैलेंस हो जाएगा, तो ये नहीं होना चाहिए, मिथ्यात्व आ जाएगा, क्या बोलेंगे फिर, और ज्यादा डेढ़ दापण करेंगे तो मिथ्यात्व की बात करने लग जाएंगे।
पंडितों को ऐसा लगता
है,
पंडितों को ऐसा लगता था,
ऐसा लगता
उनको खुद को क्या लगता था,
लगता था नहीं, लगता है भी, ये भी है अभी तो। ये गुरुदेव 27 नंबर का पत्र है और पेज 29 है। ये गुरुदेव, आप में तीव्र भक्ति का उदय होने से ही इधर के दुख का इलाज होगा, دوسرا کوئی علاج نہیں، یہ بھلی بھانتی جانتا ہوں۔
ایسی انت بھکتی والے کو ایسا بھاؤ،
ہاں اتنی بے حد بھکتی ہوتے ہونے پر بھی ان کو کیا لگتا تھا کہ ابھی بھی میری بھکتی میں کمی ہے، اگر میری بھکتی پوری ہوتی تو ان کے چرن میں ہی میں رہتا، میری بھاونا میں کچھ کسر ہے، اوشیہ کسر ہے، ان کو ایسا لگتا تھا جبکہ بھکتی بے حد تھی۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، جس کو ہوتا ہے اس کو ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ ناپ جوگ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو آتم لابھ نہ ہوا ہے اور نہ ہونے والا بھی ہے، اس لیے ان کو یہ ترک وترک اٹھتا ہے، اور جس کو انت لابھ ہوتا ہے اس کو تو پورو اور انت بھکتی آئے بنا رہے گی۔ यदि एक ही ऐसी दूसरी कोई बात नहीं हो, यदि एक ऐसी अपूर्व भक्ति से सत्संग की उपासना की हो तो अल्पकाल में ये भक्ति ही मिथ्या आग्रह आदि सभी प्रकार के दोष का नाश होकर अनुक्रम से जीव सर्व दोषों से मुक्त हो जाएगा, परिपूर्ण निर्दोष हो जाएगा। इसलिए यथार्थ भक्ति है वो परम पदार्थ है। क्या यथार्थ भक्ति है वो परम पदार्थ है? या सत्संग में चला कर नहीं चला आपको? यथार्थ भक्ति परम पदार्थ, क्या लिखा है कृपालु देव ने कि यदि एक ऐसी अपूर्व भक्ति से सत्संग की उपासना की हो तो अल्पकाल में मिथ्या आग्रह आदि नाश हो और अनुक्रम से जीव सर्व दोषों से मुक्त हो जाए। सर्व दोषों से मुक्त हो जाए तो निर्वाण पद की प्राप्ति हो जाए, सीधी साधी बात है। सर्व दोष का नाश हो तो परिपूर्ण निर्दोष हो जाएगा। एक पकड़ लो अपूर्व भक्ति, बस बात खत्म। कितना सरल हो गया मार्ग, मार्ग एकदम सरल हो जाएगा। और अपूर्व भक्ति आए बिना कुछ भी करेगा मार्ग हाथ में नहीं आएगा, क्योंकि एक ही रीत से काम होता है, दो प्रकार से काम होता ही नहीं कभी। सत्संग की पहचान होना जीव को दुर्लभ है। सत्संग की पहचान मैंने क्या, यथार्थ सत्संग कहां चलता है, असली सत्संग कहां चलता है और नकली सत्संग कहां चलता है, उसकी पहचान होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि दो पांच जने पच्चीस जने इकट्ठे हो जाए इसलिए सत्संग है, ऐसा नहीं होता है। यथार्थ सत्संग तो परिणमन पर असर लाए बिना रहे नहीं और क्रम से उसका विकास हुए बिना रहे नहीं। तो ऐसा सत्संग हमको कहां मिलता है, इसकी पहचान होनी चाहिए, वरना कहीं ना कहीं जगह जीव फंस जाएगा। फंस जाएगा मतलब क्या, तो वो करता रहेगा, वहां सत्संग करता रहेगा और लाभ कुछ होगा नहीं। और ऐसे हमने देखा है कि 50-50 साल से सत्संग करें और परिस्थिति में कोई सुधार नहीं है, थोड़ा बहुत बिगाड़ आ जाएगा, सुधार तो होने का सवाल ही नहीं है। एक ही जगह ज्यादा टाइम लगेगा और आगे बढ़ेगा नहीं तो पीछे अवश्य जाएगा ही जाएगा। जीव को सत्संग की पहचान होना दुर्लभ है, किसी महान पुण्य योग से उसकी पहचान होने पर निश्चय से यही सत्संग सत्पुरुष है ऐसा साक्षी भाव उत्पन्न हुआ हो, वह हुआ हो तो वह जीव को अवश्य ही प्रवृत्ति का संकोच करना और अपने दोषों को क्षण क्षण कार्यकार और प्रसंग प्रसंग में तीक्ष्ण उपयोग से देखना और देखकर उन्हें परीक्षण करना। क्या लिखा कि अगर महान पुण्योदय से या पुण्य योग से पहचान आई कि यथार्थ सत्संग यहाँ है और कोई सत्पुरुष भी है ये सत्संग में, तो उस जीव को साक्षी भाव मैंने विश्वास आया हो, प्रतीति आई हो, साक्षी भाव मैंने प्रतीति आई हो, बस निश्चय से यही सत्संग अच्छा है, उस जीव को अपनी जो सांसारिक प्रवृत्ति है उसको संक्षेप कर लेना चाहिए समय बचाने के लिए। सबसे पहला काम, पहला भाव ऐसा उसको आना चाहिए कि अगर इतना दुर्लभ से दुर्लभ अपूर्व अलभ्य सत्संग का योग हमें मिल रहा है तो हमें हमारी जो प्रवृत्ति है हो सके तो बंद कर देना, अगर जरूरत नहीं हो तो। क्या ज़्यादा पैसे वगैरह की कोई ज़रूरत आवश्यकता न हो तो उनको तो बंद कर देना अच्छा है, अगर ऐसी परिस्थिति न हो तो उनको समय ज़्यादा से ज़्यादा मिले ऐसा एडजस्टमेंट कर लेना चाहिए, प्रवृत्ति में एडजस्टमेंट कर लेना चाहिए। अभिप्राय में क्या है कि हमको पूरा का पूरा समय सत्संग के लिए मिले तो अच्छा है, लेकिन परिस्थिति ऐसी नहीं है, कई प्रकार के बंधन और प्रतिबंध होते हैं तो एडजस्टमेंट तो करना ही चाहिए। अवश्य ही प्रवृत्ति का संकोच करें।
मुमुक्षु को बंधन होता है कि प्रतिबंध होता है?
प्रतिबंध होता है उसको तो बंधन होता ही है। ज्ञानियों को जब बंधन होता है प्रारब्ध कर्म का तो मुमुक्षु को तो होगा ही होगा, लेकिन वो अकेला बंधन नहीं है, प्रतिबंध के साथ बंधन है। ज्ञानी को प्रतिबंध नहीं है, मैंने वो अटकते नहीं, मोक्ष मार्ग में अटकते नहीं, वो आगे बढ़ते रहते हैं, इसलिए प्रतिबंध नहीं है, अवरोध नहीं है उसको। लेकिन ज्ञानी को परिस्थिति का बंधन कुछ न कुछ पूर्व प्रारब्ध का रहता है, तो प्रारब्ध का योग तो मोक्ष को भी होता है लेकिन वो प्रतिबंध के साथ होता है, वो उसमें अटकता है, इसलिए उसको अकेला बंधन नहीं कहा जाता है, उसको प्रतिबंध के साथ बंधन कहना, तो दोनों है उसको, तो प्रतिबंध भी है और बंधन भी है। हाँ, प्रतिबंध है वो स्वयं ने खड़ा किया हुआ अवरोध है, मैंने अपने परिणाम में प्रतिबंध है, और बंधन है वो उदय की परिस्थिति है, दो अलग अलग बात है। तो ज्ञानी को अपने परिणाम में कोई ऐसे प्रतिबंध होते नहीं है, वो तो मुक्त ही होता है, वो प्रतिबंध में नहीं आते, लेकिन कुछ परिस्थिति वशात उनको मर्यादा में रहना पड़ता है तो उसको बंधन कहने में आता है। जैसे आयु का बंधन होता है वो तो 13वें गुण स्थान तक होता है, देह को छोड़ा नहीं जाता, होता है कि नहीं आयु का बंधन? वो पूर्व प्रारब्ध है, जितना आयु हो उतना भोगना ही पड़े। मान ले के क्या है भाई, हमारे प्रारब्ध ऐसे हैं, लेकिन उनको तो उस प्रकार के संयोग का मोह होता है और अटकता है, तो बंधन की आड़ लेकर के प्रतिबंध का सेवन करता है तो स्वच्छंद रूप प्रवृत्ति कर देता है। ऐसा होना चाहिए ये कहने का अभिप्राय। अगर विश्वास आया हो, प्रतीति आई हो, तो अवश्य ही प्रवृत्ति का संकोच करें, अपने दोषों को क्षण क्षण में देखे, प्रतिक्षण देखे दोषों को, कितनी जागृति होनी चाहिए, क्षण क्षण पर देखे, प्रत्येक कार्य में देखे और प्रसंग प्रत्येक प्रसंग में भी देखें। कैसे देखें? तीक्ष्ण उपयोग करके देखें, यानी कि छोटे दोष भी हमारे सामान्य प्रसंग में, सामान्य कार्य में होने वाले छोटे दोष भी हमारे नजर के बाहर जाना चाहिए, ऐसा उपयोग सूक्ष्म हो जाना, तीक्ष्ण हो जाना चाहिए। वो दोष को देखने का आता है कि नहीं आता है, तीक्ष्ण उपयोग से दोष को देखे, दोष का विचार करे, ऐसा नहीं लिखा है, दोष को देखने का लिखा है। क्या मतलब होता है इसका? कि चलते परिणाम में जो दोष है उसको वो देख लेता है, पकड़ लेता है, जो परिणाम दोष में चला गया बाद में उसको ज्ञान में आया वो विचार हो जाता है, क्योंकि देखने का विषय प्रत्यक्ष है, वो अवलोकन है, उसका विषय प्रत्यक्ष है और विचार का विषय परोक्ष, भूतकाल में चला गया दोष होता है। तो जो दोष हो गया उसमें तो कोई नहीं होने का सवाल नहीं है, लेकिन जो चल रहा है उसको देखेगा तो उसमें फर्क हुए बिना रहेगा, ये दोष की शक्ति टूट जाएगी, दोष का रस टूट जाएगा, नियम से टूट जाएगा। तो दोष को की ताकत तोड़ने का ये रामबाण इलाज है, उसको देखना वो रामबाण इलाज है। इसलिए इस शिविर में आए हुए भाई बहनों से अपना ये प्रयोग चलाया है था, तो भी देखो आपको क्या क्या नजर आता है और उसकी चर्चा और निवेदन करो। देख करके परीक्षण करे, वो परीक्षण हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा, और उस सत्संग के लिए क्या, सत्संग प्राप्त करने के लिए देह त्याग करने का योग होता हो तो भी स्वीकार करना, कितनी कीमत चुकाना सत्संग के लिए, कि प्राण त्याग करने के भी हम तैयार है, लेकिन हम सत्संग के बिना जिंदा रह सकते हैं? उतनी तैयारी हो और सत्संग नहीं मिले ऐसा कभी बनता नहीं है, लेकिन हमको तो हमारी अनुकूलताएं हो तो सत्संग में जाना है, हमारी अनुकूलता नहीं है तो हम सत्संग में जा सकें। अरे कभी कभी तो हम कहलाने वाले मुमुक्षु को सत्संग का मूल्य सब्जी तरकारी से भी कम हो जाता है। क्या हुआ, आज सुबह सुबह मेहमान आने वाले थे, सब्जी तरकारी लाए बिना चलने वाला नहीं था, तो हम चले गए वेजिटेबल मार्केट में और सत्संग में नहीं आ सके। ये बात हो जाती है कभी कभी। तो ऐसे तो सत्संग की उपासना कभी हो सकती नहीं है। गुरुदेव सोनगढ़ विराजते थे तो कई लोग अपना व्यवसाय छोड़ करके गुरुदेव के प्रवचन सुनने को आए थे। कई लोगों ने छोड़ दिया था, कई लोगों ने नौकरी छोड़ दिया था, कई लोगों ने व्यवसाय छोड़ दिया था, कई लोगों के कुटुंब परिवार विरुद्ध में थे तो कुटुंब परिवार को छोड़ करके चले आए थे। अरे कई लोगों ने पढ़ाई छोड़ दिया था, तो स्वीकार कर लेना। क्या स्वीकार कर लेना,
गुरुदेव का सत्संग के लिए जो लोग इतना इतना छोड़ के आए तो उनको सत्संग का कीमत तो आ गया, तो क्यों अपना काम नहीं कर पाए थे?
कुछ जो लोग कुछ मात्रा में कर भी पाए और कुछ लोग नहीं भी कर पाए, तो उसका कारण वो है के भावुकता में आकर के तो छोड़ दिया हो, भावना से आए हैं उनको तो लाभ हुआ है, एक को भी किसी को भी लाभ नहीं हुआ है ऐसा तो नहीं बना है। जैसे पूज्य बैंसरी का दृष्टांत लो, वो घर छोड़ के निकल गए थे, उनको लाभ हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। यथार्थ भावना से आए हैं उनको तो लाभ हुआ है, लेकिन जो भावुकता से आए उनका उफान है वो बैठ गया, फिर भाव तो आगे चला नहीं तो उसको लाभ नहीं हुआ है। उत्तरो उत्तर जो मूल्यांकन हुआ है उसका भाव वृद्धिगत हो जाना चाहिए, वो तो भाव वृद्धिगत नहीं हुआ तो पीछे चला जाएगा, निरस हो जाएगा, वो भी हमने देखा है कि वहां परमानेंट रहते हैं लेकिन व्याख्यान में लेट से आए, कोई 5 मिनट, कोई 10 मिनट, कोई 15 मिनट, कोई 20 मिनट, कोई आधा घंटा, इसको सत्संग की कोई कीमत नहीं है। ट्रेन और बस या प्लेन छूट जाए तो हम टाइम के पहले जाएंगे क्योंकि हमारा पैसा चला जाएगा। सत्संग में कभी भी जा सकते हैं क्योंकि वहाँ तो कोई लेने देने का तो पैसे का तो सवाल होता नहीं है, मुफ्त में मिलती है चीज, तो उस तरह से कोई लाभ होता नहीं है। जब सावधानी और दरकार नहीं रही तो लाभ होने वाला भी नहीं है, लेकिन जितना परसेंट में आए उतना परसेंट तो लाभ होगा कि नहीं होगा? भले लेट आए लेकिन आए तो सही तो नहीं। कोई परवशता से कभी हो गया दूसरी बात है, लेकिन आदत जिनको बन गई उनको तो 1% भी लाभ होने वाला नहीं है। उसमें क्या होता है, जीव उदय को मुख्य करता है। आज वो कारण बन गया, कल वो कारण बन गया, परसों वो कारण बन गया, कोई ने कोई उदय की मुख्यता कर लिया और एडजस्टमेंट किया नहीं, तो ये भी सत्संग निष्फल होने का कारण है। परंतु उससे अधिक विशेष किसी पदार्थ में या किसी प्रसंग में किसी उदय में भक्ति स्नेह प्रीति रुचि होने देना योग्य नहीं है। स्पष्ट लिखा है कि नहीं लिखा है? अगर हमको सत्संग की अधिकता रही तो सावधानी आएगी आएगी और आएगी। तथा प्रमादवश रस गारव आदि दोषों से उस सत्संग के प्राप्त होने पर पुरुषार्थ धर्म मंद रहता है। सत्संग में तो जीव आता है लेकिन पुरुषार्थ नहीं चलता है, क्या क्या कारण है? या तो प्रमाद है, शिथिलता है, या तो रस गारव मैंने कहीं ने कहीं बाह्य विषय में ज्यादा रस है। एक और अधिक झुकने से दूसरे और के कार्य में सफलता आती नहीं है। इसलिए सत्संग उपासना जिसको करनी है उसको उदय के परिणाम में निरसता, जिसको उदासीनता कहते हैं, वैराग्य कहते हैं, वो होनी ही चाहिए, जब ही सत्संग सफल होगा। सत्संग भी करें और उदय का कार्य वैसे के वैसे रस से हमारा चलता रहे तो सत्संग भी सफल होने वाला नहीं है। और सत्संग फलवान नहीं होता, ऐसा जानकर ऐसा समझकर पुरुषार्थ वीर्य का गोपन करना योग्य नहीं है। इसलिए पुरुषार्थ को संकुचित मत करना। पुरुषार्थ तो कर सकते हैं, कर सकते हैं, फिर क्यों नहीं करते हैं? कि गोपन करते हैं, संकुचित कर लेते हैं, संक्षेप कर लेते हैं, वो करना योग्य नहीं है। कभी आड़ मार देते हैं, क्या करें हम तो सामान्य मनुष्य है, हम क्या कर सकते हैं, जितना हो सके उतना करते हैं, क्या करें भी क्या हम, ऐसा नहीं लेना। हम कर सकते हैं, अच्छी तरह कर सकते हैं, लेकिन हम हमारे पुरुषार्थ को गोपवते हैं, वो करना चाहिए
नहीं।
मूल्यांकन की क्षति है रूपी, वो भी है, और प्रमाद इसलिए आता है। हाँ, प्रमाद और रसगारव होता है, उसमें मूल्यांकन का अभिप्राय का दोष है, अभिप्राय का दोष है। दोष को विचारें तो नाश न होए, और दोष को देखने से दोष का नाश होता है, ऐसा क्यों बनता है? वो प्रैक्टिकल साइड है इसका, कि जो दोष चला गया, व्यतीत हो गया, उसमें हम क्या फेरफार कर सकते हैं? जो है ही नहीं, जो बन गया, उसमें क्या फेरफार कर सकते हैं? हम दृष्टांत देते हैं कि कांच का बर्तन है, हाथ में से गिर गया और फूट गया, अब क्या करें? फूटा नहीं फूटा बनेगा, लेकिन हाथ में है उस वक्त सावधानी रखे तो नहीं भी गिरे। ऐसे चलते हुए दोष को देखे तो उसी वक्त वो रस का रस, दोष का रस गल जाता है, और जो दोष चला गया उसका विचार करने से कोई फायदा नहीं, वो तो बन गया सो अनबन में है। क्या कहते हैं,
जो चला गया उसकी चेन ना चले,
इसकी हाँ उसमें क्या है, कि विचार करने से, उस वक्त तो हमको ऐसा लगता है कि चलो इतना विचार तो आया, लेकिन दोष हो जाने के बाद पता चलेगा इसका क्या करोगे। देखने में तो जागृति होती है, तो जागृति के कारण उसकी श्रृंखला नहीं चलेगी, जागृति होगी तो श्रृंखला नहीं चलेगी। विचारने से उतनी जागृति नहीं आती है जितनी देखने से जागृति आती है, इसलिए देखना वो प्रयोग बढ़िया है। दोष ने देखने से नाश न हो तो उसका क्या, ऐसा बन ही नहीं सकता। देखे और ना उसका रस नहीं टूटे, ऐसा बन ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल बात है। अनुभव करके देख लेना। वो तो दूसरी विषय दूसरा ही, बारहवां पैराग्राफ। सत्संग की अर्थात सत्पुरुष की पहचान होने पर भी यदि वह योग निरंतर न रहता हो तो सत्संग से प्राप्त हुए उपदेश का ही प्रत्यक्ष सत्पुरुष के तुल्य समझकर विचार करना तथा आराधन करना, कि जिस आराधन से जीव को अपूर्व सम्यक उत्पन्न होता है। देखो, सम्यक दर्शन उत्पन्न होने का कारण बोल दिया, बता दिया कि सत्पुरुष की पहचान होने पर तो सम्यक उत्पन्न होता ही है। ये सम्यक उत्पन्न होने का मूल कारण तो यही है। फिर भी ये बात हो सकता है कि निरंतर इनका प्रत्यक्ष योग नहीं मिलता हो, तो प्रत्यक्ष योग में जो जो बातें हमने सुनी हैं उनको प्रत्यक्षवत ले लेना। लेकिन वो बात सुनी है तो प्रत्यक्षवत ले करके हमको प्रत्यक्षता की कीमत चली जाए, ऐसा करना पहचान होने वाले को तो ऐसा होता भी नहीं। लेकिन कभी कभी कोई ऐसा ले लेते हैं, क्या करें। अभी हमने गुरुदेव को सुना था, अभी हम गुरुदेव को प्रत्यक्षवत हृदय में रख लेते हैं, ऐसा तो उसको तो प्रत्यक्ष की ज़्यादा तीव्रता आनी, आतुरता रहनी चाहिए। फिर भी नहीं मिले तो उपदेश को प्रत्यक्षवत ग्रहण करने का प्रयास चलना चाहिए। प्रत्यक्ष सत्पुरुष के तुल्य उपदेश को समझकर विचार करना, सिर्फ विचार ही नहीं करना, आराधन करना। आराधन करना मैंने अमलीकरण करना, कि जिस आराधन से जीव को अपूर्व सम्यक्त्व उत्पन्न होता है। अमलीकरण करने से तो सम्यक्त्व उत्पन्न होता ही है, सुनने से सम्यक उत्पन्न होता है नहीं, विचार करने से सम्यक उत्पन्न होता है नहीं, लेकिन अमलीकरण करने से तो सम्यक्त्व होता ही है। बहुत मार्मिक बात कर दी, इसलिए हैं जी।
परे विचार का काम जो आता है तो बुद्ध चेतन देव का जो परे विचार का काम, तो वहां विचार करने से प्राप्ति की बात है।
ना, उसमें क्या है कि विचार करने के बाद अमलीकरण का स्टेज आता है, सब बात एक पद में कैसे समाविष्ट करें। जो कर विचार तो पाम जिसने किया है, उसने ही वो बात तो किया है, वो कोई अन्य ज्ञानी की तो बात नहीं है। विचारना और आराधन करना, विचार करके बंद रह जाना ऐसा नहीं लिखा, आराधन करने की बात क्यों किया। पद में तो जो बात आती है वो संक्षेप में प्रास मिले उतनी बात उसमें समाविष्ट होती है। बात तो और होती है और जगह जो बात होती है उसका हमें कोऑर्डिनेशन कर लेना चाहिए। जीव को मुख्य से मुख्य और अवश्य से अवश्य कितना वजन देते हैं? मुख्य से मुख्य और अवश्य से अवश्य, यह निश्चय रखना चाहिए कि मुझे जो कुछ करना है वह आत्मा के लिए कल्याण रूप हो उसे ही करना है। मेरा जो कल्याण है वही हमको करना है। आत्मकल्याण की मुख्यता कभी छुपनी चाहिए नहीं, वही हमको करना है। बाकी की बात अकल्याण की है वो हमें करना नहीं है, और उसी के लिए तीन योगों की उदय बल से प्रवृत्ति होती हो तो होने देना। आत्मकल्याण के लिए तीन उदय मैंने मन वचन और काया, ये तीन योग की उदय प्रवृत्ति होती हो तो होने देना, आत्मकल्याण के लिए हो तो होने देना। परंतु उसमें और परंतु अंत में, उसमें नहीं अंत में, उस त्रियोग से रहित स्थिति करने के लिए उस प्रवृत्ति का संकोच करते करते क्षय हो जाए, यही उपाय कर्तव्य है। क्योंकि उदय से तो कोई आत्मलाभ होता नहीं है, उदय की प्रवृत्ति छोड़ना है। अंतर्मुख परिणमन के सिवा जितना भी बहिर्मुख परिणमन होता है वो उदय की प्रवृत्ति समझ लेना है। कोई भी हो, बहिर्मुख परिणमन उदय के साथ जुड़ करके ही होता है। जो आत्मा में जुड़ करके होता है वो अंतर्मुख परिणमन होता है। और देखिए कि जो अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा हुआ, उन्होंने बाह्य प्रवृत्ति का त्याग किया कि कुछ रखा। मुनिराज को आखिर में पंच महाव्रत आदि प्रवृत्ति होती है, 28 मूल गुण की प्रवृत्ति होती है, कुछ उत्तर गुण की भी प्रवृत्ति होती है। वो छोड़ करके अरियंत होते हैं के रख करके होते हैं, हैं? सब साधन बाह्य साधन छूट जाते हैं। वो बात क्या है कि अंत में उस त्रियोग की मन वचन काया से योग से रहित स्थिति करने के लिए उस प्रवृत्ति का मैंने त्रियोग की प्रवृत्ति का संकोच करते मैंने कम करते करते क्षय हो जाए, यही उपाय कर्तव्य है। ऐसा उपाय कर्तव्य है। यह उपाय क्या है कि मिथ्या आग्रह का त्याग करना, मिथ्या आग्रह को छोड़ देना, स्वच्छंदता का भी त्याग कर देना, प्रमाद और इंद्रिय विषय का भी त्याग करना, ऐसे परिणाम मुख्य है। और भी बातें हैं लेकिन ये परिणाम है वो मुख्य परिणाम है। मुमुक्षु की भूमिका की चर्चा चल रही है इसलिए ऐसे परिणाम की बात किया है। उसे सत्संग के योग में अवश्य आराधन करते ही रहना, और जब सत्संग का योग रहता है तो साथ साथ इनका त्याग करने का अमलीकरण करना, आराधन करना मैंने अमलीकरण करना, करते ही रहना। और सत्संग की परोक्षता में तो अवश्य अवश्य आराधन के ही जाना, प्रत्येक सत्संग के में तो चालू रखना, लेकिन सत्संग का योग नहीं हो तो चले जाओ काम धंधे पर, वो बात होना चाहिए है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता था, सत्संग बंद हो जाए चलो लग जाओ अपने काम में, ऐसा होना नहीं चाहिए। अच्छा वो पिछले 2 महीने में सत्संग यहाँ चालू हुआ है, वरना सत्संग बंद हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सत्संग तो चालू ही, परोक्षता में तो अवश्य आराधन करना, अमलीकरण का विशेष दरकार करके करना। क्योंकि सत्संग के प्रसंग में तो यदि जीव की कुछ न्यूनता हो तो उसके निवारण होने का साधन सत्संग है। सत्संग में तो कोई दोष हो तो निवारण होने का साधन है न्यूनता, मैंने कमी। परंतु सत्संग की परोक्षता में तो एक अपना आत्मबल ही साधन है। सत्संग की उपस्थिति में तो सत्संग एक साधन है, लेकिन जब सत्संग नहीं हो तो एक आत्मबल ही काम करेगा। तो आत्मबल वहां तो विशेष होना चाहिए, सत्संग नहीं मिले तब तो आत्मबल विशेष होना चाहिए। देखो कैसा मार्गदर्शन है, बहुत सुंदर मार्गदर्शन है ये। वरना क्या होता है, ये प्रश्न उठता है, सत्संग में आते हैं तो हमारे परिणाम बहुत अच्छे रहते हैं, जब सत्संग नहीं मिलता है तो हमारे परिणाम बिगड़ जाते हैं। ये होना चाहिए, उस वक्त और सावधानी रखना चाहिए। विशेष आत्मबल से आत्म कार्य करने का हमारा परिणाम हो जाना चाहिए। यदि वह आत्मबल सत्संग से प्राप्त हुए बोध को अनुसरण न करें, उसका आचरण न करें, अनुसरण न करें और आचरण, देखो आचरण की बात करते हैं, और आचरण में होने वाले प्रमाद को न छोड़े, तो किसी दिन भी जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। चलो सत्संग मिला उतना दिन तो हम जाएंगे, बाकी का बात राम भरोसे। तो ये सब सत्संग का जो भी थोड़ा बहुत असर है वो खत्म हो जाएगा। और असत्संग का असर बलवान हो जाएगा। सत्संग छूटा तो और क्या रहा, असत्संग ये बलवान हो जाएगा। संक्षेप में लिखे हुए ज्ञानी के मार्ग के आश्रय के उपदेशक इन वाक्यों, ये वचन कैसे हैं, ये 13 पैराग्राफ जो दिया ने लिखा ने, तो उसका उसके लिए क्या बोले, क्या लिखते हैं कि संक्षेप में लिखे हुए, क्या लिखा, ज्ञानी के मार्ग के आश्रय के उपदेशक वचन है। ये ज्ञानी का मार्ग का आश्रय कराने वाला वचन है। ज्ञानी का मार्ग इस प्रकार का है, ज्ञानी के मार्ग पर नहीं चलेंगे तो स्वच्छंद हो जाएगा, और ये परिभ्रमण का मुख्य कारण तो स्वच्छंद ही है। इस वाक्यों को मुमुक्षु जीव को अपने आत्मा में निरंतर परिणमन करना योग्य है। मुमुक्षु जीव को निरंतर पढ़ना ऐसा नहीं लिखा है, परिणमन की बात ले आते हैं। पढ़ लिया सुन लिया वो बात नहीं चलेगी, परिणमन होता है कि नहीं होता है वो देखो, नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है वो देखो, क्यों नहीं होगा, होना चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा थोड़ा कड़क हो जाओ अपने आप परिणमन के लिए, थोड़ा कड़क हो जाओ, ऐसा नहीं चलेगा। ठोठ निशाड़िया हो ने, हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम नहीं, ठोठ निशाड़िया को क्या बोलते हैं, हाँ वो रोज स्कूल पे तो जाए, कुछ सीखे नहीं, उसको तुमको कुछ आता नहीं, नहीं आता है वो बराबर, लेकिन जाता हूँ तो हूँ, रोज स्कूल में तो रोज जाता हूँ, क्या काम का है? स्कूल जाता और सीखता नहीं है तो स्कूल जाना बेकार हो गया, इसका क्या? वहां तो बराबर डंडा पड़ता है, यहां भी डंडा पड़ना चाहिए, डंडा पड़ना चाहिए कि नहीं पड़ना चाहिए? डंडा पड़ना चाहिए बराबर है। निरंतर परिणमन करने योग्य है, जिन्हें हमने इस वचनों को हमने अपने आत्मगुण का विशेष विचार करने के लिए शब्दों में लिखा है, हमने तुम्हारे लिए लिखा है उतनी बात नहीं है, हमारे आत्मगुण का विशेष विचार करने के लिए वो बात हमने लिखी है। स्वलक्ष्य से ये बात आई, एकांत परलक्ष्य से आई नहीं है। देखो कृपालु देव लिखते हैं तो साथ साथ क्या क्या लिख देते हैं, कि कोई एकांत कोई परोपदेश पांडित्य में ऐसी बात नहीं है।
हाँ